ओम शांति। आज 12, 10, 22 12 में 10 में लौ वैसे 22 होता है। बहुत सुंदर तिथि है और इस सुनहरे सुंदर प्रभात की वेला में प्यारे बाप दादा का इस सीजन का प्रथम मिलन है और कल्प पहले वाले प्यारे बाप दादा के बच्चे हूबहू 5,000 वर्ष के बाद इस डायमंड हॉल में दूर दूर से आकर, जिसको हम कहते हैं बाबा का घर, अपना घर मधुबन में इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो जो आत्माएं प्रैक्टिकल में पहुंच गई हैं, आप सबको प्यारे बाबा के घर में पधारने की और ऐसे अति सूक्ष्म और दुर्लभ अवसर पर पधारने की बहुत 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 उससे भी बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। हम जब गीत सुन रहे थे तो मुझे लग रहा था ये पुराना पिछली सदी का कोई गीत है। बड़ी मुश्किल मंजिल है, दूर रास्ता है, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, आदि आदि ये करना होगा, वो करना होगा। बताओ अब तेज कदमों से चलने का समय है क्या या उड़ने का समय है? लंबी मंजिल आदि आदि पुराना गीत है, इसलिए अच्छा है, पता लग जाता है कि ये बहुत हमारे बचपन का गीत है। और कहाँ बचपन और कहाँ जिसको कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था और निर्वाण अवस्था। तो पहली बात तो ये है कि आज बाबा ने अमृत वेले ही हम सब बच्चों को समझा दिया और उसके बाद प्रातः मुरली में हम सब जानते हैं कि जादूगर की जादू की मुरली है जो ऐन ठीक अवसर के ऊपर आती है और उस दिन के लिए अति उपयुक्त होती है। इसलिए हमें कोई पोथी पुस्तक रखना नहीं पड़ता। तो मुरली में भी बाबा ने हमको बता दिया कि तुमको क्या करना है और मैंने करवाना है। तो पहली बात तो ये है कि हम कोई भी आत्मा कभी भी किसी भी कल्प में अपनी पुरुषार्थ से या एफर्ट से उस पार पहुंच जाए ये तो हो ही नहीं सकता। नैया को पार लगाने वाला, आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला परमात्मा पिता है। और फिर बाबा ने तो कहा हुआ है ये बहुत सहज मार्ग है, सहज ज्ञान है, सहज योग है, तो फिर बड़ी मुश्किल मंजिल और बहुत कठिन आदि आदि शब्द जो हैं हमारी डिक्शनरी में नहीं है। बाबा ने तो हमको हमारी परीक्षा का पेपर पहले दिन बता दिया और कहा वही पेपर पहले दिन जिस दिन हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ था और आज जब हम यहां बैठे हैं और अंत घड़ी जो कभी भी किसी की भी आ सकती है, सृष्टि का ही अंत घड़ी आने वाली है, पेपर सेम है। केवल पहले वो समझने की बात थी, फिर अच्छी तरह से धारण करने के पुरुषार्थ की बात थी और अब फाइनल उसका स्वरूप बनने की बात है। पेपर सेम है, सब जानते हैं, कोई सीक्रेट पेपर नहीं है, आउट हुआ हुआ पेपर है। अब वो है मैं कौन हूं। पहले दिन बाबा ने जब हमने जन्म लिया तो हम जानते हैं कि यही स्मृति दिलाई कि आप मेरे कल्प पहले वाले भाग्यवान बच्चे आत्मा हो। जब हम लोग ज्ञान में आए थे, बाबा साकार में थे, तो जो भी टीचर ग्रुप को अपनी पार्टी को पंडा बन के मधुबन लाते थे तो रास्ते में ये पहले ही उत्तर सिखा देते थे कि देखो बाबा पूछेगा बच्चे कल्प पहले मिले हो, और तुम कहना हाँ बाबा हम कल्प पहले आपसे मिले थे, बताओ। वो टीचर सिखा देते थे और हम सब वही बोलते थे और बाबा वही पूछते थे। मतलब क्या हुआ, चाहे किसी ने हमें सिखाया लेकिन बाबा इस क्यों पूछते थे कि पहले दिन ही हमको स्मृति, वो स्मृति जो विस्मृति बन जाती है, 5000 वर्ष पहले की बात है, होती है, तो बाबा हमको वो दिला देते थे कि बच्चे तुम कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, कल्प के बाद सिक्की लदे बच्चे, अर्थात बहुत सीख सीख कर मिले हुए बच्चे मुझे मिले हो। कहने को दिए सिंपल शब्द हैं किंतु इसमें बहुत बड़ा रहस्य था, आज भी है, कि पहली बात के शरीर का भान उड़ जाता था। शरीर के भान में तो हमारा जन्मदिन इस जन्म का होता था, लेकिन कल्प पहले वाले, 5000 साल पहले वाले तो जरूर आत्मा ही होंगे, तो आत्मा के हिसाब से हमारा, जिसको हम अलौकिक जन्म कहते हैं, ब्राह्मण जन्म कहते हैं, हो जाता था। और यही विधि बाबा ने थ्रू आउट रखी। हम जानते हैं भगवान तो भगवान है, जादूगर है। बाबा ने ये विधि केवल ज्ञान सुनाने के माध्यम से नहीं अपनाई, बल्कि हम सब जानते हैं रक्षाबंधन एक ऐसा उत्सव है जो ब्रह्मा कुमारी का ट्रेडमार्क है। दुनिया में तो लौकिक ढंग से यादगार है, लेकिन बाबा ने ये विधि करवाई कि जो लोग भिन्न भिन्न क्षेत्र के हैं, जो बाबा कहते हैं बड़े बड़े हैं, आज भी मुरली में कहा है कि पहले उन बड़े बड़े लोगों को आपको इनवाइट करना है, उनको परिचय देना है, फिर जनरल ओपन करना है, तो उनसे कैसे मिला जाए। उस समय तो ब्रह्मा कुमारी इसका नाम भी थोड़ा था, तो बाबा ने ये विधि करवाई, चाहे वो मिलिट्री का व्यक्ति हो, कोई जज हो, कोई भी हो, रक्षाबंधन पे बहने जाएंगी, राखी बांधनी है तो अवश्य टाइम दे देंगे। और फिर हर वर्ष चाहे वह व्यक्ति अपने पद पोजीशन में रहे या ना रहे, उसको लगातार आप समझिए 70-80 वर्ष तक उसको स्मृति रहती थी कि बहनें आई थी। और सिंपल तरीका वही कि माथे में निशान बिंदी लगा देना, यहाँ आत्मा रहती है। तो जैसे ज्ञान से बाबा हमको कहते थे तुम कल्प पहले वाली आत्मा हो, तो इतना कहने से और बिंदी लगाने से उनके अंदर बीज पड़ जाता था। फिर राखी बांधते थे, ये पवित्रता का रक्षाबंधन है, तो उनको एम ऑब्जेक्ट भी मिल जाता था। इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से बाबा ने बच्चों को दिव्य जन्म दिया। अच्छा, बेसिक बात यही हो गई कि हमारा जो जीवन का प्रोग्राम था वो एक जीवन से हटकर, जो अन्य दुनिया के सभी मनुष्यात्माओं का एक जीवन का रहता है, अपना जो भी वो समझते हैं प्रगति तरक्की, उसको बाबा ने फौरन बदल कर हमारा अनादि अविनाशी लक्ष्य रख दिया। तो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि हमारा कुछ भी चला जाए लौकिक तरीके से, सबसे प्यारा शरीर है वो भी चला जाए, पर हमारा कुछ नहीं जाता। ये कितनी बड़ी इंश्योरेंस है, कितना बड़ी स्थिरता है। अब कि हम अविनाशी हैं, अनादि हैं, हम शाश्वत हैं। तो बाबा ने देखो ये बता दिया कि तुम एक छोटी बिंदी स्वरूप हो, ज्योति बिंदी स्वरूप हो, परलय भी हो जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कितनी बड़ी ये शक्ति है। और जो तुमने भरना है इसमें भर लो, तो आज भी तुम्हारा और सदा के लिए तुम्हारा। और जो तुम्हें तंग करता है उसको इससे निकाल दो, तो आज भी सुखी और कल भी खुश सुखी। तो ये तो बहुत ही आसान फार्मूला है, पर बाबा ने बताया कि ये तो मैंने तुमको कल पहले भी बताया था। और सचमुच आप सभी भाग्यशाली आत्माएं जिन्होंने डायरेक्ट परमात्मा बीज रूप से ब्रह्मा जी के द्वारा दिव्य जन्म लिया है, या मर जीवा जन्म लिया है, या जो सीधे ही डायरेक्ट संतान हैं, उनका कितना भाग्य है। ये तो बाबा ने हमें दिखा दिया, बता दिया, पर ये भी साथ बता दिया कि बच्चे पूर्वजों की जो जायदाद होती है चलती है, बहुत समय चलती है, लेकिन एक दिन वो पूरी हो जाती है। फिर आपको अपने आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म फल रहना होगा। और फिर ये भी दिन आएगा जो नए से पुराना हो जाएगा, पर ये भी कह दिया चिंता की कोई बात नहीं, फिर मैं आके तुमको उसी स्थान पे पहुंचा दूंगा। तो बस इतना खेल कहानी के रूप में बाबा ने हमको बता दिया। तो ये भी बता दिया कि जब मैं स्मृति दिलाता हूँ अंत में आके, वो स्मृति के आधार पर और मेरे साथ से मेरे को सब कुछ समर्पित करके आप बहुत सहज रीति से नैया में बैठे रहो, खवैया मैं हूँ, तुम्हारी नाव डोलेगी तो बहुत, सच की नाव है, झूठ की दुनिया है, तो हिलाएंगे जुलाएंगे तो बहुत, लेकिन मैं तुम्हारी नैया को निश्चित पार कर दूंगा। अब बताइए इसमें हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। तो सर हमारे बहुत गीत बने हुए हैं कि बाबा सब कुछ करवाता है, करता है, और नाम हमारे को रोशन कर देता है, गोवर्धन पर्वत खुद उठवाता है, हमसे उंगली लगवा देता है कि बच्चों का भाग्य बन जाए, मुझे तो, मैं तो भाग्य से ऊपर हूँ, भाग्य विधाता हूँ, तो इसलिए लौकिक में भी माता पिता अपने बच्चों से दान करवाते हैं, उनके हाथ में देते हैं दान करने को। छोटा बच्चा होता है तो सिर पर ही घुमा करके दान कर देते हैं, बच्चे का भाग्य बन जाए। इसलिए हम सब इतने भाग्यशाली बच्चे हैं, तो बाबा ने कह रखा है कि सारे कल्प में ना किसी का ऐसा भाग्य था, ना है और ना होगा। इससे ज्यादा और क्या बेफिक्र बादशाह कहो, बेगमपुर के बादशाह कहो, सदा के लिए जिनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करे, उससे बढ़कर कौन होगा। और अगर आप आज की दुनिया से तो कंपेयर करना बिल्कुल आवश्यक ही नहीं है। आज तो रक्षा मंत्री को भी अपनी रक्षा रखनी पड़ती है, है रक्षा मंत्री देश की रक्षा करेगा, पर उसकी रक्षा करने के लिए उसको अंग रक्षक रखने पड़ते हैं, तो कैसी दुनिया है ये। इसलिए इस डायमंड हॉल में बैठकर, नाम भी इसका बहुत अच्छा रखा है, इसका कोई नाम स्वर्णिम हॉल नहीं रखा, डायमंड हॉल रखा है, ठीक रखा है, क्योंकि स्वर्णिम युग में तो ये हॉल रहेगा ही नहीं, और डायमंड युग में जो डायमंड रूपी आत्मा है, जिन आत्माओं को भगवान ने ये ज्ञान दे दिया कि गोल्डन से भी ऊंचा डायमंड है, वो मैं आपको बना रहा हूँ, वापस चमका रहा हूँ, तो उसमें बैठने वाले डायमंड बच्चे, और वो भी बाबा के मधुबन घर में, जिसको बाबा कहते हैं कि ऊपर जाने के लिए हर एक आत्मा को परम धाम घर पहुंचने के लिए या सतयुग में जाने के लिए इस यहाँ पर आना और यहाँ आकर के इसको अपना घर मानना और बाबा को अपने पिता रूप से पहचानना, पिता शिक्षक सतगुरु, बस इतना ही आवश्यक है। आज की मुरली आप देखेंगे तो भी बाबा ने क्या कहा कि मैं परमात्मा अपने सब बच्चों से पिता हूँ, बराबर का प्यार करता हूँ। कोई ये ना समझे कि मैं बच्चा तो कुछ नालायकी कर लेता हूँ, कुछ लापरवाही अलबेलापन कर लेता हूँ, तो बाबा मुझे कैसे प्यार करेगा। बाबा तो जानता है कि ये बच्चा बीच बीच में आलस भी करता है, सबको जानते बूझते लापरवाही भी करता है, तो मैं बाबा के दिल तक पे कैसे होऊंगा, बाबा मुझे कैसे प्यार करेगा। लौकिक पिता भी अपने नालायक बच्चे को इतना प्यार नहीं करता, बाबा इसमें भी तसल्ली दे देता है, कहता है बच्चे मैं तो किसी की कमी कमजोरी देखता ही नहीं, मैं तो अवगुण देखता ही नहीं, तुमको भी कहता हूँ अवगुण किसी के मत देखो, मैं तो अपने बच्चों के गुण ही देखता हूँ। इसलिए जो सदा गुण देखता है वो तो उसका दिल तखत तो हर बच्चे के लिए है। और आज बाबा ने पुनः रिकन्फर्म कर दिया कि चाहे मेरा लास्ट नंबर का पुरुषार्थ अनुसार बच्चा है, उससे भी मेरा उतना ही प्यार है, और हर बच्चे से मेरा एक दूसरे से बढ़कर प्यार है, ताकि कोई बच्चा इधर उधर भी ना देखे कि बाबा औरों को भी प्यार कर रहा है। तो भक्ति मार्ग में भी कृष्ण को भगवान मानते हुए हर आत्मा रूपी गोपी के साथ दिखाया गया है। और बाबा कहते हैं बल्कि जो बच्चा लास्ट नंबर का है, प्यार के साथ मैं उसके ऊपर रहम भी करता हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि रहम से भाव ये है कि ये भी बच्चा फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर में आ जाए, तो आज मुरली में भी बाबा ने बताया कि जैसे बाप रहम दिल है, आप बाप समान रहम दिल बनो और पहला रहम तो अपने ऊपर करो और फिर अन्य के ऊपर रहम करो। तो ये सारी बातें लिंक बैठती हैं। और जहां तक रास्ता मंजिल आदि का क्वेश्चन है, तो बाबा ने हमको आज भी दो शब्द दिए हैं बड़े आसान। क्या कि एक रस स्थिति के आसन पर बैठो या फरिश्ता के आसन पर बैठो। अब फरिश्ता हल्के से हल्का है, फरिश्ता आसन पर बैठ जाओ तब भी वही बात है। एक रस स्थिति के आसन वो बिल्कुल वो है जो आसान ही आसान है, क्योंकि अप जाएगा डाउन जाएगा तो स्थिति ऊपर नीचे होगी। एक रस बस बैठ जाना है, ये हमारी तपस्या है। तो हर लिहाज से आप देखेंगे तो सहज ज्ञान, सहज योग, सहज मार्ग। कोई फिक्र है तो भगवान कहता है मुझे दे दो, तो बेफिक्र निश्चिंत बादशाह और बेगमपुर के ऐसी नगरी, फिर ऐसी दुनिया हमारे संगम युग की अलौकिक, जहाँ कोई गम का नाम निशान नहीं है। इससे ज्यादा आसान खुशी का और सदा खुशी का, क्योंकि तो एक रस में सदा खुशी रह सके, अवसर क्या हो सकता है, हो सकता है। तब बाबा कहते हैं, गुलजार दादी भी यही कहती थी कि कुछ भी चला जाए खुशी ना जाए, खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जानकी दादी कहती थी, सुख दो सुख लो, जो हमारे पास होगा वही हम देंगे। तो हम अपने पास रखें ऐसी चीज जो दूसरे को दें वो भी खुश हो जाए। अर्थात ये है हमारा मार्ग और ये है हमारा रास्ता। उतरने को तो बाबा कहता है तुमको जू की स्पीड पर उतरते हो, स्लोली, पता भी नहीं लगता, लेकिन चढ़ने के लिए तो एक सेकंड की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ आप सभी भाई बहन, हम लोग सब एक मत होते हैं, एक मत होकर ये बाबा हमारी नैया को ले ही जा रहा है। हम अनमने होके भी बैठेंगे तो बाबा हमको मंजिल पर पहुँचा ही देगा। इसलिए इस खुशी में इतने सारे डायमंड हॉल में बैठे हुए डायमंड, पहले ये सोचकर आज बाबा का दिन है तो बाबा विशेष तौर पे आज शांति वन में पूरा टाइम प्रेजेंट हैं। क्योंकि बाबा जब साकार में आते थे तो भी अपने दिन पर निश्चित तौर पे आते थे, हम उनको साकार के द्वारा साकार में देखते थे। अब बाबा कहते हैं अंतिम घड़ियां हैं, तुमको ऊपर आना है, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ अब अपने तीसरी आंख के द्वारा हमें आप अव्यक्त रूप में देखो, अपने को भी अव्यक्त रूप में समझो, लेकिन मैं हूँ जरूर यहाँ मौजूद। और समय पर तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल से कहो बाबा याद करो तो मैं आऊँगा, परंतु आज के दिन तो बाबा कहते हैं कि मैंने खुद निमंत्रण देकर अपने बच्चों को डेट फिक्स की गई है, बाबा का दिन है, आए हैं। तो अपने साथ बाबा को महसूस करके हम अनुभूति करेंगे तो आज का दिन एक यादगार दिन बन जाएगा। इतनी अनुभूति हम अपने अपने सेंटरों में तो काफी समय लगाकर कर पाएंगे, जो आज हम कुछ घंटों के अंदर कर सकते हैं। इस सब की स्मृति रखते हुए मेरे ख्याल में प्रफुल्लित मन होकर, जैसे बाबा ने कहा याद ही उड़ाएगी हमको, ज्ञान तो एक फाउंडेशन है जो तैयारी करवाता है, उस याद में बैठकर हम थोड़ी देर उड़ान भरें और प्रसन्न होकर जब हमको लगे कि अब हम सचमुच सूक्ष्म लोक में पहुंच गए हैं, फिर आप हर्ष से भले ताली बजाना, थोड़ी देर पहले हम सब मिलकर सूक्ष्म लोक में जाते हैं। सारी की सारी सभा एक मिनट के लिए फरिश्ता रूप धारण करके सूक्ष्म लोक में पहुंच जाएं, एक मिनट बाद हम यहां वापस आ जाएंगे और वहां बाप दादा सूक्ष्म रूप में हैं, उनसे हम बाप दादा को कहें बाबा लीजिए आपके डायमंड हॉल से, आपके मधुबन से हम आपके पास आपकी आज्ञा के अनुसार फरिश्ता रूप धारण करके मिलन मनाने आए हैं। ओम शांति। अब हम ये सोचते हैं कि आज का मैं कौन हूं, अपना चित्र हम अपने सामने लाते हैं, आज मैं आत्मा कौन हूं। हमारी ब्राह्मण रूप से संगम युग की यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है और हमको प्यारे बाबा ने कर्मयोगी और ट्रस्टी और निमित्त का पाठ लगातार पढ़ाया है और उसी अनुसार हम सब अपने पूरे लगन से, चाहे हम परिवारों में रहते हैं, चाहे हम सेंटर्स पर रहते हैं, हमारा लौकिक भी अलौकिक ही है, तो जो हमारी शुद्ध प्रवृत्ति रही है उसमें हम कर्म योगी बनके अपनी दिनचर्या चलाते आए हैं और नित्य प्रति बाबा को याद करना, बाबा की मुरली सुनना और बाबा की बताई हुई दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, संबंध संपर्क के अंदर आना और साथ साथ अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब को भी सूली से कांटा बनाते हुए बाबा की मदद से चुकतू करना, ये हम सब अब तक करते आए हैं, अर्थात आज का मैं कौन हूं ये है। और बाबा ने हमको तीन श्रेष्ठ रूप हमारे बताए हुए हैं कि ताजधारी, तखत नशीन और तिलकधारी, ये तीनों अलौकिक हमारी स्थिति बताई हुई है। अब यहां से आगे अपनी फाइनल स्थिति के लिए पूरी तैयारी करने के लिए, जबकि समय कभी भी अंत का आ सकता है और वैसे भी विश्व की अंतिम घड़ी अब तो सबको स्पष्ट दिखाई दे रही है, उसमें हमको क्या करना है, यही हमारा आज का विषय है। तो आप देखेंगे बाबा हमको अब तक कर्म योगी ब्राह्मण के रूप में संगम युग बिताने को चलाते आए हैं। अब बाबा कहते हैं कर्म योगी से लास्ट स्टेप है कर्मातीत। अब कर्म योगी और कर्मातीत में क्या अंतर होता है ये हमको अपने सामने रखना है। तो कर्म योगी श्रेष्ठ कर्म करता है और श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा करता है और कर्मातीत का अर्थ ये होता है, एकदम थोड़ा उसमें फर्क है कि हम कर्म करते हुए न्यारे होकर कर्म करें, आगे था निमित्त बन के करें, ट्रस्टी होकर करें, ध्यान रख के श्रेष्ठ कर्म करें। लेकिन अब बाबा कहते हैं मंजिल बहुत ऊंचाई पर है और हमको एक ही पार लगाने वाला है, उसका ये डायरेक्शन है कि सबसे न्यारे और एक मेरे प्यारे बनो, केवल मेरे को ही पूरा आधार बनाओ। इसलिए कर्म योगी नहीं, कर्मातीत अर्थात सब प्रकार के कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से न्यारे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हमने देखा है कि अयथार्थ कर्म या व्यर्थ कर्म से न्यारे होने का हम पुरुषार्थ और अभ्यास करते रहे हैं, लेकिन अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, जिसका अच्छा फल आता है, जिसमें हमारी पूंजी जमा होती है, उसको बाबा कहते हैं सोने की जंजीर, अर्थात वो कर्म भी हमें बांधता है। अब अगर उस कर्म में भी हम बंधे रहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि हम अपनी स्थिति के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उसकी मात्रा और उसकी क्वालिटी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार होगी। लेकिन अगर हम टोटली न्यारे होकर, कर्मातीत होकर कर्म करेंगे तो उसका आधार होगा केवल बाबा। तो बाबा हम जो नामानुसार हमारी प्रारब्ध है, जो स्थिति हमारे सामने आएगी, वो बाबा से प्यारे होकर हम करेंगे, दुनिया से न्यारे होकर, और अपनी शक्ति और अपनी जो योग्यता उससे भी न्यारे होकर करेंगे। तो ये फर्क है। इसलिए बाबा ने हमको एक रस, जो आज भी कहा कि एक रस स्थिति पे आसन पे बैठना है, या फरिश्ता रूप के स्थिति के आसन पर बैठ के कर्म करना है, तो उसमें पांच शब्द हमको बाबा ने दिए हुए हैं। और पहला उसमें है एक नामी, अर्थात एक नामी का अर्थ है कि केवल एक, और एक बाबा ही से हमारा प्यार, हमारा कनेक्शन रहेगा। और एक नामी के लिए फिर दूसरा शब्द कहा गया एकाग्र, कि हम अन्य सब स्थितियों और परिस्थितियों से, अन्य सभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, अपने सुदर्शन चक्र से भी, और अपने ये जो तीन लोकों का हमारा ज्योग्राफी है उससे भी न्यारे होकर एक में कॉन्सेंट्रेट करें। और एक में हम तभी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अगर हम एक नामी होंगे, अर्थात हमारे सारे संबंध, हमारी सारी प्रेम एक से होगा, जिसको हम कहते हैं परम प्रिय, सुप्रीम। तो अन्य से विड्रॉ करेंगे तभी एक से होगा। अगर किसी दो, एक अलग भी हुआ, दो हो गए, तो भी बाबा कहता है आपकी एक नामी भी नहीं रहेंगे, दो नामी हो जाएंगे, और एक आग्रता भी नहीं रहेगी, हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी। और इसके लिए फिर बाबा ने कहा हुआ है एकांत। एकांत का ये अर्थ नहीं है कि हम सब कुछ सबसे अलग होकर के कोठड़ी में बैठ जाएं, ना किसी से मिले, ना कुछ कर्तव्य करें, नहीं। कर्मातीत कर्म करते हुए प्रभाव से अतीत होना है। इसी प्रकार से एकांत का अर्थ है एक के अंत को पाना। अब बाबा हमको वर्षों से रचता रचना का, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान बार बार रिपीट करवाते आए हैं, सुदर्शन चक्र हमसे चलवाते आए हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि सारा कुछ फाइनली एक में है। छोटी सी बिंदी हमारे पिता हैं, उतने ही छोटी सी बिंदी हम हैं, और उस बिंदी का बिंदी से ही टोटल कनेक्शन हो। एक के अंत को पाना, जो हम सुनते आए, करते आए कि भगवान तेरे अंत को कोई पा नहीं सकता, किसी ने तुम्हारा अंत नहीं पाया, तू बेअंत है। तो बाबा कहते हैं मैंने अपना अंत तुम बच्चों को दिया है, और उस अंत के स्मरण में रहना, और उस अंत के अनुसार ही बाबा से फुल कनेक्शन रखना, एक नामी बन के चलना और एकाग्र उस पर रहना, ये हमारा फाइनल लक्ष्य है। क्योंकि जो हम शास्त्रों में पढ़ते आए कि अर्जुन ने जो तीर मारा वो पुतली में मारा, बाकियों ने और चीज देखा, उसका यही भाव है। और फिर बाबा कहते हैं इसका टेस्ट क्या है, अगर आप ये तीन स्थितियों में रहोगे तो आपकी एक रस अवस्था रहेगी। अब तक हमारी अवस्था कभी बहुत खुशी की, कभी कम खुशी की। जब भी बाबा हमसे पूछते थे बच्चे तुम्हारी क्या कैसे हो, हम कहते थे बाबा ठीक तो हैं पर उतने ठीक नहीं हैं जितने हम चाहते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड आंसर होता था। आज भी मान लो बाबा से हम बातचीत करते हैं, रू रिहान करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि बाबा कुछ और, कुछ और। तो अर्थात हम खुद नहीं, हमारा दिल कहता कि हमारी अब अवस्था उस प्रकार की संपूर्ण हो गई है। अगर नहीं है तो फिर अप एंड डाउन जरूर होगा, बहुत ज्यादा और ज्यादा, इतने में तो फर्क रहेगा ना, कभी डायमंड एज, कभी गोल्डन एज, कभी कभी सिल्वर एज। इसलिए एक रस का आसन जो बाबा ने कहा वो तभी हो सकता है अगर हम पूरी तरह से एक नामी रहें, एक आगर एकाग्र रहें और एकांत, एक के अंत को इतना भगवान का ज्ञान है रचना और रचयिता के, रचता के अंदर हम अब रचना को संभालें। और फिर जब हम एक रस अवस्था में हो जाएंगे, उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको बाबा कहते हैं इकोनॉमी, अर्थात बचत करना। अगर हमने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होना है तो अब अन्य हर चीज से हमको अपने आप को समेटना पड़ेगा। हम अपने शब्दों की बचत करें, हम अपने समय की बचत करें, हम अपने जो भी फैलावट है उसको समेटें। समेटते 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 हम बिंदु के अंदर उसको समाना है हमने। तो ये सारी की सारी पांचों एक्सरसाइज तभी संभव हैं अगर हम कर्मातीत होकर कर्म करेंगे, दुनिया से न्यारे हो जाएंगे और बाप के प्यारे हो जाएंगे। और उसके लिए हमको फरिश्ता रूप ही धारण करना आवश्यक है। जब तक हम साकार रूप में रहेंगे, ब्राह्मण रूप में रहेंगे, श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी रहेंगे, तो हम इन चीजों से अलग नहीं हो सकते। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पोजीशन, अपना फैलाव, अपनी लौकिकता, सब कुछ अंदर आएगी। लेकिन हमने देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, तो ब्रह्मा बाबा अंतिम दिनों में हम मिलने जाते थे तो ऐसे लगता था बाबा कहीं और है। फिर हम बाबा से बात करते थे तो बाबा जैसे बात कर रहे हैं लेकिन डिसइंटरेस्टेड होके कर रहे हैं, उत्तर भी दे रहे हैं लेकिन उपराम होके दे रहे हैं। तो जो बाबा कभी कभी हमें कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति हो, उपराम अवस्था हो, तुम्हारे अब दुनिया की तरफ पीठ हो और आने वाली दुनिया का की तरफ तुम्हारे सारी बुद्धि लगे, मन बुद्धि वहां लगे, तो मन बुद्धि का अर्थ क्या कि जहां हमने अब जाना है, जाना ही है पक्का, ये दुनिया तो अंत होनी है, शरीर भी हमको ये छोड़ना ही है, तो वहां के प्रबंध और वहां की सारी व्यवस्था हमारे अंदर चले और पास्ट की जो बात है उसको फुल स्टॉप लग जाए। हमारा निमित्त मात्र हम यहाँ हैं और वेट कर रहे हैं कि कब हम वहां जाएं। तो ये स्थिति हम केवल फरिश्ता रूप से ही धारण कर सकते हैं। और फरिश्ता आप देखेंगे, बाबा ने हमको बताया हुआ है और हमने भी बीच बीच में अनुभव किया हुआ है कि फरिश्ता जो होता है उसके लिए पहली बात यह है कि वो हल्का होता है। हल्के का अर्थ क्या है कि वो किसी भी बात में भारी नहीं होता, उसको ना पीछे क्या हो गया उसका ख्याल नहीं रहता, जो हो गया सो हो गया, आगे क्या होगा वो भी उसको ख्याल नहीं रहता, क्योंकि ड्रामा निश्चित है और अनेक बार हमने अपना पार्ट बजाया हुआ है। लेकिन उस स्थिति में अब हमको प्रैक्टिकल चलना है। फिर फरिश्ता एक जगह टिकता नहीं है, हमको इसी प्रकार से रहना, जैसे चक्कर घूमता ही रहता है। हमको बाबा ने हमारे 5 स्थान बताए हुए हैं जहाँ हमको चलते फिरते रहना है, जिसको हम 5 अवस्थाएं कहते हैं, 5 स्थितियां कहते हैं, 5 प्रकार के एक्सरसाइज कहते हैं, अपने मन की यात्रा कहते हैं। तो उसी प्रकार से फरिश्ता रूप में हम किसी एक स्थान पर टिके ना। फिर फरिश्ता ना पुरुष होता है ना स्त्री होता है, फरिश्ता किसी से रिश्ता नहीं गांठता है, और फरिश्ता सदा कल्याण का सोचता है। और यही बात फरिश्ता की हमको प्रैक्टिकल यहाँ रह के धारण करनी है। अगर जरा सा भी अपने भी कमजोरी सोच ली तो भी हम फरिश्ता नहीं हैं। बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ, कमजोरी का चिंतन करोगे तो हिम्मत कम होगी, हिम्मत नहीं रखोगे तो मेरी मदद नहीं, मिलते हुए भी नहीं ले सकोगे। तो ये सारी बातें हैं। दूसरी बात क्या है कि आत्मा वास्तव में केवल वासना लेती है, आत्मा के अंदर कुछ धारण नहीं होता है, आत्मा केवल अनुभूति करती है और अनुभूति कराती है। एक चावल का दाना भी आत्मा के अंदर नहीं जाता है। जब हम बाबा को भोग लगाते हैं तो बाबा भी कहते हैं बाबा वासना लेते हैं, और हम भी वास्तव में वासना से संतुष्ट हो सकते हैं। मान लीजिए एक फल बेचने वाला है, अब फल बेचने वाला सारा दिन फल बेचता है, उसकी फल बेचते बेचते फल की वासना इतनी उसके अंदर ले लेता है, वो उसके फल से तृप्ति हो जाती है। अगर किसी फल बेचने वाले को आप उसके जन्मदिन पर जाकर एक फल की टोकरी दें कि आज आपका जन्मदिन है ये आपको दे रहे हैं, तो हंसेगा, वो कहेगा फलों से तो मेरा दिल भरा हुआ है। वो फल उसने कभी खाया ना भी हो तो भी फल को देख देख कर बेच बेच कर उसका दिल भर जाता है। मुझे याद है एक बार मैं कुल्लू में गया था सेवा पर, तो मुझे सेब के गोदाम में सुलाया गया था। उसके बाद 6 महीने सेब का नाम सुनते ही ना मेरा ऐसे मन भरा हुआ होता था कि और कोई बात करो, सेब का नाम मत लो। इसी प्रकार से आप देखेंगे मिठाई वाला जो है वो मिठाई बांटते 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 उसका बल मिठाई से भरा है, क्योंकि वासना ले लेकर ही उसकी तृप्ति हो जाती है। तो कहने का भाव ये है कि फरिश्ता रूप में बाबा ने हमारे लिए सूक्ष्म वतन जो केवल संगम पर ही बनता है, बाबा ने बताया हुआ है जब हम परम धाम से नीचे आएंगे तो सूक्ष्म वतन नहीं होगा। वास्तव में ये हमारे ब्राह्मणों का सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर है, और बाबा कहते हैं कि ना वहाँ कोई समय की सीमा है, ना कोई बंधन है, देह का बंधन है। इसीलिए बाबा स्वयं सूक्ष्म रूप धारण किया कि किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाए, आत्मा फ्री रहे और शरीर भी रहे उसका। तो अव्यक्त शरीर, सूक्ष्म शरीर या फरिश्ता रूप, उसमें बाबा ने बताया हुआ आप हर प्रकार की भासना ले सकते हो, हर प्रकार की वाइब्रेशन दे सकते हो, कोई भी बंधन आपको नहीं है। तो उस स्थिति को हम अपने यहाँ ब्राह्मण रूप में रह करके फरिश्ता रूप धारण करेंगे तो अवश्य हम एक तो हल्के हो जाएंगे, एक हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं जिसको कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या, उसकी भी हमको अनुभूति हो सकती है। आप देखेंगे अगर कोई कार खड़ी है उसको धक्का लगाना हो तो 4 लोग चाहिए कम से कम, लेकिन उस कार का इंजन स्टार्ट कर दो तो उसमें वाइब्रेशन आ जाता है, एक व्यक्ति भी उसको धक्का लगा सकता है। हम भी जीव आत्माएं जब हैं, हमारे अंदर आत्मा है, तो हम दौड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, हल्के हैं। अगर आत्मा निकल जाए तो इतना भारी हो जाता है ये शरीर कि चार आदमी इसको उठाते हैं, थोड़ी देर बाद कहते हैं हम थक गए, अब दूसरा उठाओ। तो वास्तव में हल्कापन भी तो आत्मा में ही है ना, लेकिन शरीर हमको धोखा देता है। शरीर कहता है नहीं, अच्छा मैं ही तुम्हारी लाइफ हूं। यहां तक कह देते हैं प्राण त्याग दिए इसने, जैसे कि शरीर ने प्राण को त्यागा, ना कि प्राणों ने शरीर को त्यागा। इस प्रकार की स्थिति में हम रहेंगे तो मैं समझता हूं हम आसानी से बहुत तेज स्पीड से और ठीक डायरेक्शन से अपनी मंजिल को पा सकते हैं। सॉरी मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, मैं समझा सूक्ष्म लोक में समय की सीमा नहीं, यहां भी नहीं है। इसलिए ओम शांति। Dear.